ओम शांति। अगस्त मास आते किसकी याद आती है? दादी की याद आती है। जून मास आते मम्मा की याद आती है। जनवरी मास आते बाबा की याद आती है। जुलाई आते दीदी की याद आती है। तो सभी का अपना अपना फिक्स मास है। तो अभी हम सुनते हैं दादी जी के बारे में, कहा गया है कि अगस्त मास है दादी जी के बारे में। कौन जो दादी को नहीं देखे हैं वो हाथ उठाएंगे जरा। अच्छा, इतने लोग दादी जी को नहीं देखे हैं, कमाल है। दीदी को जो नहीं देखे हैं वो हाथ उठाए। थैंक यू। ये महान हस्तियां जो भी दादियां हैं, बाबा मम्मा, ये ऐसे अब लगता है कि ये नाटक करने के लिए धरा पर आए थे। नाटक पूरा हुआ, ड्रेस चेंज कर दिया। जैसे स्कूलों में हम लोग छोटे थे तो नाटक वगैरह करते थे, अभी भी कहीं कहीं होता है। तो घर से जाते थे, ड्रेस पहन करके नाटक करते थे स्टेज पर और चेंज करके आ जाते थे। तो ये सृष्टि रूपी नाटक में हमारी ये मेन रोल प्ले करने वाली बाबा मम्मा दादी दीदी, सब दादियां, दादी जानकी, दादी गुलजार, ये लोग अपना पार्ट प्ले किया और पूरा। दादी जी बचपन से सुनाती थी हम लोगों को। मधुबन बहुत छोटा सा था, थोड़े से हम भाई बहने होते थे। हिस्ट्री हॉल में मुरली सुनाई जाती थी, आप सोच सकते हैं कितने लोग होंगे। और तो दादी जी अपने लहर में आकर के अनुभव सुनाती थी। तो दादी सुनाती थी कि हमारा जन्म ब्राह्मण परिवार में, और उनके फादर ज्योतिषी थे, हस्तकला देखने वाले विद्वान थे। इनका जन्म हुआ तो इनका हाथ देख करके अपने वाइफ से कहते हैं कि मेरे घर में मीरा आई है। ये मीरा है, इसके हस्त बोल रहे हैं कि ये मीरा है। तो बचपन से ही उन लोगों की भावना, दादी की और भी सिस्टर थी, सबको उन्होंने मैरिज किया सब कुछ, लेकिन दादी के लिए कुछ नहीं कहा, क्योंकि शुरू से उनकी फादर की भावना थी कि ये मीरा है। तो दादी जी भी अनुभव सुनाती थी कि जब हम थोड़ा बड़े हुए, स्कूल में जाना शुरू किए, तो मुझे और कुछ किसी चीज में इंटरेस्ट नहीं थी, केवल मंदिर। घर के पास एक कृष्ण का मंदिर था, तो कृष्ण के मंदिर में दोनों समय जाती थी। पढ़ाई लिखाई में बहुत होशियार, फर्स्ट आती थी दादी, और दिवाली के दिनों में छुट्टियां होती है स्कूल के, तो इनके पिताजी ने कहा कि बेटी स्कूल की छुट्टियां हैं, पड़ोस में दादा सत्संग कराते हैं, वहां तुम जाया करो। उनके फादर ने भेजा दादी को। दादी कहीं जाती नहीं थी, दादी का कोई फ्रेंड सर्कल नहीं था, नहीं तो होता है ना, बच्चे होते हैं उनके फ्रेंड सर्कल होता है, आना जाना होता है। दादी शुरू से कोई फ्रेंड सर्कल नहीं बनाया, कोई कुछ नहीं, शांत एकांत पढ़ाई में मतलब, और घर में ही कुछ खेल पाल करना है, कुछ ये करना है तो किया करती थी। तो फादर के कहने से ये सत्संग में गई। वहां जाते सत्संग का टाइम इनको पता नहीं था, तो लेट गई तो पीछे बैठी थी, और जब बाबा ओम की ध्वनि लगाए तो ट्रांस में चली गई और सत्संग पूरा हुआ, ओम के ध्वनि पूरी हुई तो सब भाई बहने माताएं छुट्टी हो गया तो अपने अपने घर चले गए। बाबा सामने बैठे हैं, दादी सामने बैठी है, दादी ट्रांस में है, तो बाबा सोचे कि मैं चला जाऊंगी तो अकेले बैठी है ठीक नहीं है, तो बाबा बैठे रहे दृष्टि देते रहे। ट्रांस से उतरी तो देखा थे यहां कोई नहीं है, केवल बाबा बैठे हैं, तो चुप से घर चली गई। लेकिन घर में शेयर जाके मम्मी से पापा से किया कि मैं जाते मुझे मैं ट्रांस में चली गई और मुझे श्री कृष्ण का साक्षात्कार हुआ, उससे खेल पाल किया, और जब मैं ट्रांस से नीचे आई थी यहां कोई नहीं था तो मैं चुप से आ गई। तो उस दिन से दादी रेगुलर जाने लगे, और वो बातें सुनकर के दादी की मम्मी, दादी के फादर और दो तीन बहनों का तो मैरिज हो गया था, तो वो अपने घर थे, इतना ही परिवार था, भाई उनके नहीं थे, तो वो तीनों आने लगे। दादी जैसे जैसे मैट्रिक पास किया था, दादी मैट्रिक तो पढ़ी थी, और जैसे जैसे दादी वहां आई तो उनके जीवन में परिवर्तन होने लगा। एक ही साक्षात्कार हुआ, दादी का दोबारा साक्षात्कार नहीं हुआ, और ट्रांस में एक ही बार गई। और जब इनके जीवन में परिवर्तन आने लगा तो बाबा तो परखने वाले थे, दादा बाबा ने परखा कि नहीं ये बच्ची यज्ञ की संभाल कर सकती है, तो फादर को बोल करके बाबा ने, उनके फादर भी आते थे, तो उन्होंने कहा कि बच्ची को यहां रहने दीजिए, तो उन्होंने कहा कि आपकी बच्ची है यहां रहे वहां रहे जहां कहिए वहीं। तो दादी वहां आश्रम में रहने लगी, और भी धीरे धीरे भाई बहने आने लगे। आश्रम का एक सत्संग का बड़ा रूप हो गया, छोटा सा बाबा स्टार्ट अपने घर से किया, सत्संग में लोग आने लगे, जैसे जो भी आते थे उनको साक्षात्कार हो जाता था। तो सिंध में ये आवाज हो गई कि बाबा के सत्संग में जाएंगे, जो भी जाता है उसको साक्षात्कार होता है। अब कौन नहीं चाहेगा कि साक्षात्कार होता है तो हमको भी साक्षात्कार हो। आप लोगों में से भी किसी किसी की आस होगी कि यहां बैठे बैठे हमको भी कृष्ण का साक्षात्कार हो जाए, श्री नारायण का साक्षात्कार हो जाए तो हमारा भाग्य हो जाए। है क्या कोई? कोई है? हाथ उठा सकता है? अच्छा, दो चार लोग हैं। अब आप साक्षात्कार लक्ष्मी बनने वाली हैं, लक्ष्मी का साक्षात्कार करना नहीं है, आप बन रहे हैं। आप मेडिकल कॉलेज में जाएंगे तो डॉक्टर का साक्षात्कार करना है या मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर बनना है? तो इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में आए हैं तो आप साक्षात्कार का आस छोड़ दें, और साक्षात्कार ऐसा तपस्या करें कि इस शरीर में रहते लोगों को लक्ष्मी का वाइब्रेशन मिले। ये देखने में मनुष्य है, लेडीज है, फीमेल चोला है, लेकिन ये लक्ष्मी का आभास हो रहा। नर पुरुष ऐसा श्रेष्ठ कर्म करे वो चलते फिरते श्री नारायण जैसा लगे, मुकुट वाला नहीं। ब्रह्मा बाबा मुकुट नहीं पहने थे, लेकिन उनका व्यवहार, उनका बोल, उनका चाल, उनकी दृष्टि, उसमें इतना पावर आ गया कि वो फरिश्ता दिखाई देने लगे। वो श्री नारायण दिखाई देने लगे। उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं बहुत तपस्या किया हूं और मैं नारायण हो गया। उन्होंने कभी बाबा ने ब्रह्मा बाबा के जीवन कहानी आप पढ़िए कहां भी नहीं लिखा है, लेकिन लोगों को देखते ही ये श्री नारायण है। यहां तक कि उनकी वाइफ यशोदा मैया, चार बच्चों की मां, पति परमेश्वर मान करके पतिव्रता नारी, बाबा को तिलक लगा करके आरती उतार करके और दुकान में भेजती थी, गद्दी पर भेजती थी, हीरे जवाहरात का बहुत बड़ा दुकान था। इतनी भावना वाली औरत माता, उसको पति ना दिखाई देकर के श्री नारायण दिखाई देने लगा। देखिए कितनी बड़ी विडंबना, चार बच्चों की मां है, ऐसा नहीं कि एक साल से आई है उनके साथ रही है, और उसकी दृष्टि बदल गई। बाबा ने नहीं कहा कि मैं नारायण हूं तो मेरे को पति के बदले नारायण देखो, ना। बाबा ने ऐसी तपस्या किया। एक बार की बात है, थोड़ा हम अलग दादी के हट करके बाबा के बारे में थोड़ी सुनाना चाहूंगा। एक बार की बात है, यशोदा मैया बाबा के लिए नाश्ता बना के लाई, उनकी डॉटर निमशांता, पुत्र वधु ब्रिजेंद्रा दादी दोनों सोफे पर बैठी थी, बातचीत कर रही थी। तो यशोदा मैया ने कहा कि बच्चियां, मैं नाश्ता बना करके लाई हूं, बाबा को आप लोग जाकर के नाश्ता कराओ। दोनों ने जवाब दिया, मम्मी आप बहुत प्यार से नाश्ता बनाकर लाई है, आप ही कराओ ना। तो मम्मी क्या जवाब देती है कि हम बाबा के पास जाते हैं तो बाबा नहीं दिखाई देता है, वो तो कृष्ण दिखाई देता है, नारायण दिखाई देता है, मैं किसको नाश्ता कराऊं। तो दोनों बच्चियों ने जवाब दिया कि मम्मी हम भी कभी कुछ काम से बाबा के पास जाते हैं तो बाबा नहीं दिखाई देता है, वो तो नारायण बैठा है, कृष्ण बैठा है, मैं उनसे क्या बात करूं। कहने का भाव कि हम ऐसी तपस्या करें कि ये आस छूट जाए कि मुझे लक्ष्मी का साक्षात्कार हो जाए, नारायण का साक्षात्कार हो जाए, कृष्ण का साक्षात्कार हो जाए। नहीं, हम हैं, बाबा हमको क्या बना रहा है, इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय का लक्ष्य क्या है, नर श्री नारायण बने, नारी श्री लक्ष्मी बने। तो दादी को धूम सवार हो गया, खूब तपस्या किया, दादी के जीवन में परिवर्तन आ गया। इतना परिवर्तन आ गया कि कोई भी कोर्स करने के लिए आता था तो बाबा मम्मा को, दादी को, मनोहर दादी को भेजते थे जी आप लोग जाके कोर्स कराओ, गंगे दादी को। कुछ दादियां बहुत ज्ञान में आगे चली गई। तो दादी जी अपने व्यक्तित्व से वो इतना आगे गई, मम्मा तो यज्ञ की पालनहार थी, पालना करती थी, सब बच्चों को देख रेख करती थी, इतना श्रेष्ठ पार्ट प्ले किया कि परमात्मा शिव बाबा को उनको मम्मा कहना पड़ा। पहले तो उन्होंने कहा ये मम्मा है, मातेश्वरी है, जगदम्बा है, तो सबने कहना शुरू किया। खाली बाबा ने टाइटल नहीं दिया, जैसे मैं डॉक्टर हूं मुझे टाइटल मिल गया, डिग्री मिल गया, या कोई भी डॉक्टर को डिग्री मिल जाता है तो डिग्री से प्रैक्टिस नहीं करता, मेहनत करता है। डिग्री तो स्टडी का एक रूप, पेपर मिला, लेकिन वो मेहनत करता है, प्रैक्टिस करता है कि कोई भी किसी भी प्रकार के मरीज आए, ऐसी मैं दवाई दूं कि वो ठीक होकर जाए। तो दादी ने प्रैक्टिस किया, मम्मा ने प्रैक्टिस किया, इतना मम्मा ने प्रैक्टिस किया कि मम्मा की मदर, जिन्होंने मम्मा को जन्म दिया, वो भी मम्मा को मां कहती थी। देखो आप में इतना परिवर्तन आ जाए कि आपके मां आपको मां कहे, कितनी बड़ी बात है। सोचो एक मिनट, घर में चले हम, कितना परिवर्तन करना पड़ेगा कि हमारी मम्मी हमको मां कहे। तो मम्मा ने इतना परिवर्तन किया, इतनी तपस्या किया। उन दिनों में 3:30 बजे उठने का रिकॉर्ड नहीं है, वो बहुत बाद में बना है। बाबा के टाइम में भी 3:30 बजे नहीं उठते थे, 4 बजे उठते थे। बाबा 15 मिनट हिस्ट्री हॉल में योग कराते थे, फिर निर्वैर भाई के ऑफिस पर आकर के थल्ले पर खड़ा होकर के लोगों को दृष्टि देते थे। बाबा के जाने के बाद 3:30 बजे का नियम बन गया कि नहीं, ये दीदी ने नियम बनाया। दीदी की अलग कहानी है। तो दादी इतनी ज्ञान युग में, जब पहला 55 में डेलीगेशन गया विदेश, जापान से निमंत्रण आया, वहां धार्मिक सम्मेलन था, तो दादी रतनमोहिनी दादी, दादा आनंद किशोर, आनंद किशोर दादा भी बहुत सज्जन, उन दिनों में बीएससी थे, आज के बीएससी नहीं, उन दिनों में पढ़ाई का कोई ये नहीं था, तब का वो बीएससी थे। इतना अच्छा उनका इंग्लिश था, इतना अच्छा व्यवहार था, इतने बड़े दादा मैनेजर थे यज्ञ का, लेकिन इतनी जौली थे, क्या बताऊं, इतने जौली थे कि वो कहते थे, हम लोग उन दिनों में इतनी सेवा नहीं होती थी, खाना बनाए और दादा के साथ म्यूजियम जाते थे पार्टी समझाने के लिए। तो एक दिन दादा बोलते हैं, बिहारी बाबू तुम खाता है, सेवा करता है, और तुम इतना पढ़ लिख करके आया है, वो सोचता है। तो हमने बोला कि दादा हम क्यों सोचे, हम तो सेवा करने आए हैं, जो आप सेवा देते हो, जो दादी सेवा देती है हम करते हैं, उसमें कुछ कमी हो तो आप बताइए। बोला कि नहीं, तुम इतना पढ़ करके आया है, डॉक्टरी करके आया है, तुमको डॉक्टरी करना चाहिए। हम बोले कहाँ करना चाहिए, कहाँ बैठे। उन दिनों में बेगरी पार्ट था, इतना अच्छा सोफा तो था ही नहीं यज्ञ में, जो आप लोग बैठे हैं ऐसी भी कुर्सियां नहीं थी, नेट की कुर्सी एक यीशु दादी के ऑफिस में होती थी, जहां पहले बाबा आकर के वहां बैठा करते थे। मैंने इतना बेगरी पार्ट हम लोगों ने भी देखा है। तो दादा ने अपने रूम से इतना छोटा स्टूल समझते हैं घरों में होता है, उस पर चढ़ करके अलमारी से कुछ सामान निकालते तो वो ले आया, और स्टूल पर बैठ करके और ये टांग पर हम फर्स्ट एड बॉक्स रख करके लोगों को दवाई देते थे, खाना बनाते थे। चलो मैं अपने अनुभव नहीं सुनाना चाहता हूँ, दादी का अनुभव सुनाऊ। तो दादी इतनी हर चीज में, विदेश में गई, इतनी अच्छी भाषण करती थी, इतनी तपस्वी थी, उनको देख करके उनके भाषण सुन करके लोग आकर्षित हो जाते थे। उन्होंने, बाबा ने 3 चित्र भेजा, गोला झाड़, 2 चित्र भेजा। तो उन लोगों को, विदेशियों को, जापानियों को इतना झाड़ अच्छा लगा, दादी जी को कहा कि दादी जी ये 2 आप लाए हैं, मैं पूरी सभा में ये बांटना चाहता हूँ। दादी ने कहा हम तो 2 ही लाए हैं। तो दादी जी को कहा कि आप छुट्टी दीजिए, इसको हम प्रिंट कराते हैं यहाँ। दादी ने भल, उन्होंने इतना प्रिंट कराया कि सभा को भी बांटा, और जो बच गया वो मधुबन को बोला कि ये बचा हुआ अब आप इंडिया ले जाइएगा। तो विदेश का प्रिंटिंग मधुबन दादी लेकर आई थी। उन दिनों में फ्लाइट नहीं, बोट से जाते थे। तो मतलब दादी इतना, अब बाबा हमेशा दादी इतनी भाषण में, ज्ञान में इतनी परफेक्ट थी कि कहां भी नया सेंटर खोलता था तो बाबा वहां भेज देते थे। दादी बिहार पटना में भी रही है, कलकत्ता में भी रही है, दिल्ली में रही है, लास्ट बॉम्बे में रही, तो दादी बॉम्बे से पार्टी लेके आती थी, जहां भी बॉम्बे कलकत्ता या पटना जहां भी रहती थी, जैसे आप बहने हमारी पार्टी लेके आप लोगों को लेकर के आई है, शुरू से यही नियम है। तो दादी पार्टी लेके आती थी, दो दिन पार्टी तीन दिन रहती थी और बाबा तुरंत भेज देते थे, अरे बच्ची तीन दिन आपको यहाँ हो गया रहते हुए, जाओ वहां सेंटर खाली है, जाओ सेवा पर जाओ। कई बार ये होता है कि पार्टी वाले चार पांच दिन रुकना चाहते थे तो दादी को भेज देता था, जे जाके आप सेंटर संभालो, इन बच्चों को बाबा देख रेख करेगा। मतलब बाबा दादी को मधुबन में नहीं रखता था, क्योंकि इतनी विद्वान, इतनी लर्नेड, इतना तपस्वी थी कि जहां जाती थी, कहां भी जाती थी ना, सभा को आकर्षित कर लेती थी। दादी में इतना पावर था। तो दादी को जहां तहां सब जगह, बेंगलोर सब जगह बाबा भेजते थे। 69 की बात है। ओम शांति। तो 64 में मम्मा अव्यक्त हुई, तो मम्मा के बाद दीदी को बाबा ने मम्मा के स्थान पर रखा, यज्ञ का कंट्रोलर थी। और दादी ज्ञान में बहुत प्रवीण थी, तो बाहर की सेवाओं में दादी को रखता था, दादी दीदी की जोड़ी। तो मम्मा के बाद दीदी ने पूरा यज्ञ का कंट्रोल किया। दीदी जी जब थे तो बहुत प्यार करती थी, लेकिन ला डिसिप्लिन क्या होती है वो दादी दीदी का बनाया हुआ। तो दादी दीदी का बाबा से बहुत प्यार, बहुत स्नेह। तो बाबा ने, बाबा को तो पता था जी अब मुझे अव्यक्त होना है, तो दीदी को बाबा ने इलाहाबाद कुंभ मेले में भेज दिया कि बच्चे कुंभ मेला है, संत सब आए हुए हैं, आप भी जाओ उनकी सेवा करो। दादी पार्टी लेकर के आई, 14 तारीख 12 तारीख को आई होगी। पार्टी रिफ्रेश होकर के चार दिन में वो दिल्ली दादा राम की पार्टी थी, माने वो सिंधी पार्टी थी, बेगरी पार्ट में उन लोगों ने बहुत मदद किया था। तो पार्टी चली गई दिल्ली, दिल्ली से उनको जब हांगकांग जाना था वो चले गए। बाबा बोलते हैं कि बेटी अगर सेंटर पर कुछ इतनी जरूरी नहीं है तो आप रुक जाओ। पहली बार दादा बाबा अपने मुख से बोलते हैं दादी के लिए कि आप रुक जाओ, नहीं तो कभी दो दिन आया है, दो दिन के बाद भेज देते थे, अरे बच्ची दो दिन हो गया तो सेंटर पर लोग याद करते हैं, फोन आ रहा है, जाओ। दादी चली जाती थी। तो बाबा ने दादी को रोका, दीदी को वहां भेज दिया। दादी को सारा यज्ञ मुरली सुना करके, नाश्ता करके, दादी को एक एक चीज, ये अनाज का स्टोर है, ये फैंसी स्टोर है, ये कपड़े का स्टोर है, ऐसे कपड़ा साल में एक बार देते हैं, किसी को कुछ चाहिए तो यहां से दिया जाता है, हर चीज दिखाया, कारपेंट्री दिखाया, कहां मकान बन रहा है वहां दिखाया। दादी सोचती थी कि आज तक बाबा ने यज्ञ का मुझे कुछ बताया नहीं, आज क्यों बता रहा है, मुझे तो यहां रहना नहीं है, चार दिन के बाद बाबा भेज देगा, फिर ये दिखाने का मतलब क्या है। अंदर अंदर विचार तो चलेगा क्यों दिखा रहा है, लेकिन दादी पूछ नहीं सकती बाबा ये क्यों दिखा रहे हो मेरे को, मेरे को तो हमेशा आप बाहर भेजते हो और फिर आप बाहर भेज दोगे, क्यों दिखाने का। तो दादी पूछा नहीं, लेकिन बाबा ने ए टू जेड दादी को दिखाया, बताया कैसे यज्ञ चलता है, क्या चलता है, हिसाब किताब सब कुछ। दादी इतनी तपस्विनी थी की पहला दादी का नाम था रमा, लौकिक नाम था रमा। फिर बाबा ने प्यूरिटी दादी में इतनी थी कि बाबा कुमार का कहा, कुमारों का, कुमार का। फिर अव्यक्त बाप दादा ने प्रकाशमणि नाम रखा, ब्रह्मा बाबा का नाम, प्यार का नाम कुमार का। तो ये सब टाइटल बाबा ने, ब्रह्मा बाबा ने, शिव बाबा ने दिया। फिर 18 जनवरी को बाबा की तबीयत खराब थी तो दादी ने कहा कि बाबा आपकी तबीयत ठीक नहीं लगती है तो आप आज्ञा दो तो मैं जाकर के मुरली सुनाती हूँ, जो आप पॉइंट लिखे हैं वो पॉइंट मुझे दे दीजिए, मैं जाकर के मुरली सुनाती हूँ, आप थोड़ा रेस्ट करिए। तो उन्होंने कहा कि ठीक है बच्ची, ये नोट्स है ले जाओ, पढ़ करके सुना दो। 18 जनवरी को सुबह के टाइम में बाबा के बदले दादी ने मुरली सुनाई और उस दिन बाबा को व्यक्त होना था। जितने पोस्ट थे सब कुछ बाबा ने अपना कुछ रखा नहीं, सब कुछ क्लियर किया, पोस्ट था जो भी, हिसाब किताब जो भी कारोबार था सब क्लियर कर दिया, निश्चिंत हो गया। शाम के टाइम में दादी को बाबा ने बुलाया और कहा कि बच्ची, आज बच्चे याद करते होंगे कि बाबा की तबीयत खराब है, सुबह बाबा ने मुरली नहीं चलाई है, मुरली के इंतजार करते होंगे बच्चे, क्योंकि बाबा को मुरली से बहुत प्यार था। तो बच्चों को आज जल्दी शाम का खाना खिला दो और बाबा जल्दी क्लास में आएंगे। तो 7:30 किचन में प्रोग्राम दे दिया दादी ने और 7:30 भोजन का बेल बजा दिया और सब लोग 7:30 तक भोजन कर लिए और क्लास में, कहा 9 बजे करते थे, 7:30 भोजन करके 8 बजे क्लास में आ गए। बाबा आए 8 बजे क्लास में, बाबा मुरली सुनाया, सुना करके बहुत अच्छी मुरली सुनाया, हर प्रकार का ज्ञान जो देना था बाबा ने दे करके आधा घंटा सुनाया होगा। सुना करके बाबा बच्चों से छुट्टी लेकर के, बाबा कभी पीठ, जैसे हम लोग निकलते हैं तो मुंह उधर होता है, पीठ हॉल के तरफ होता है, बाबा कभी ऐसे नहीं निकलते थे, पीछे के पांव से निकलते थे, बच्चों को मुंह हो पीठ पीछे हो, दरवाजे पर खड़े होकर के नमस्ते करते थे, इतना बाबा का प्यार, बच्चों से रिगार्ड था। तो 18 जनवरी को बाबा मुरली सुना करके दरवाजे पर खड़े होकर के निराकारी, निरहंकारी, निर्विकारी तीन महावाक्य सुनाया और बाबा बोले कि बच्चों से बाबा विदाई लेता है, छुट्टी लेता है। लोगों ने सोचा कि भाई हॉल से छुट्टी लेकर रूम में बाबा जा रहे हैं, अब ये थोड़ी किसी को संकल्प आया कि बाबा फाइनली छुट्टी ले रहा है फिर इसके बाद नहीं मिलेगा। तो बाबा रूम में गए, तो बाबा की तबीयत ठीक नहीं थी तो दादी और भी जो बड़ी दादियां थी साथ में गई। तो बाबा चारपाई, जो आप मधुमन में बाबा के चारपाई है, कुर्सी वगैरह तो बेगरी पार्ट था नहीं, तो बाबा चारपाई पर बैठ करके टांगे नीचे लटका करके बैठे थे, दादियां खड़ी हो गई, सामने दादी थी। तो बाबा सबको दृष्टि देते गए और अपना हाथ बढ़ाया, दादी को हाथ में हाथ दिया, दादी को हाथ में हाथ देते हुए, दादी को दृष्टि देते हुए, इतना पावरफुल दृष्टि और हाथों में शक्ति दादी अनुभव सुनाती थी। वो टाइम क्या था मैं शब्दों में वर्णन नहीं कर सकती हूँ। बाबा अपना सारा पावर, सारा शक्ति दादी को हैंडओवर करके, आंख खुली है, दादी देख रही है, दृष्टि ले रही तो देख रही है, लेकिन बाबा का हाथ ठंडा हो गया, ढीला हो गया। पहले बाबा पकड़ा था, कोई हाथ पकड़ता है, सेकंड करता है तो पकड़ता है ना, तो उस तरह से बाबा पकड़े थे। 3-4-5 मिनट के बाद हाथ ढीला हो गया क्योंकि बाबा रहे नहीं, दृष्टि तो खुली आंखें थी, कब बाबा चले गए किसी को पता नहीं लगा। तो दादी बोली कि बाबा का हाथ अभी गर्म था, अभी ठंडा हो गया, हाथ ढीला हो गया, लूज हो गया, बाबा नहीं है। तो बिस्तर पर लेटा दिया, डॉक्टर बुलाया, डॉक्टर आके कहा कि बाबा नहीं है। तो दादी को सारा पावर हैंड ओवर कर दिया और दादी अभी अकेले, दादी दीदी भी नहीं है, तो सभी को, जगदीश भाई को, सभी सेंटरों को, सब मुख मुख भाइयों को दादी ने फोन किया। उन दिनों में मोबाइल नहीं था, उन दिनों में डायरेक्ट फुल लाइन नहीं मिलता था, एक्सचेंज में जाइए, माउंट आबू का एक्सचेंज है, एक्सचेंज में कहिए कि हमको जयपुर बात करना है, कलकत्ता बात करना है, इलाहाबाद बात करना है, तो वो लोग जोड़ करके देते थे। तो दादी सब जगह फोन किया तो लोग बोले कि दादी आपको 10 बजा है, मजाक कर रही है क्या, इस तरह का मजाक किया जाता है, क्योंकि किसी को विश्वास नहीं था कि बाबा अव्यक्त होंगे, सभी को विश्वास था कि बाबा साथ चलेंगे, यज्ञ की समाप्ति बाबा के साथ होगा, हम साथ घर चलेंगे। तो दादी को लोग बोलते थे, दादी आपको क्या हो गया, आप बॉम्बे से बात कर रही है, कहां से कर रही है, अब तो बॉम्बे में रहती है। फिर दादी को सुनाना पड़ता था और दादी के अंदर बाबा ने इतनी पावर भर दिया, नहीं तो दादी के आंसू आए, सब लोग रोना शुरू कर दें, बाबा चला गया बड़ी बात है, एक ड्रॉप भी दादी के आंखों में आंसू नहीं था, इतनी शेरनी शक्ति हो करके। सबको जवाब देती थी, नहीं भाई मजाक नहीं कर रही हूं, मैं माउंट आबू में हूं, मैं पार्टी लेके आई हूं, बाबा ने मुझे रोका है, दीदी को इलाहाबाद भेजा है और ऐसे ऐसी बात है, और अभी अभी बाबा के सामने हम सब बहने खड़ी हैं। और बाबा हाथ में हाथ देते, दृष्टि देते, अव्यक्त हो गया, इसलिए आप जल्दी आ जाओ और जो भी नजदीक के लोग हैं उनको बताओ। तो बाबा तो दादी को पावर दे दिया, जो लोग आते थे आंसू बहाते आते थे, दादी दृष्टि देती थी, नहीं बिल्कुल आंसू बहाना नहीं है, बाबा गया नहीं है, बाबा यहां है। दादी तो पावर थी तो पावर से बोलती थी, लेकिन भावना बस, आंसू तो आते ही थे, सब रोते ही थे, आंसू बहता ही था, लेकिन दादी ने बहुत पावर रख करके, आंसू की बात आ रही तो मम्मा कैसे शरीर छोड़ा, बाबा ने एक ड्रॉप आंसू नहीं बहने दिया किसी बच्चे को, मां जाए बच्चे रोए नहीं, ऐसे दुनिया में नहीं होता है। लेकिन बाबा ने इतनी पावर से सब बच्चों को योग कराए। एक मिनट मम्मा के बारे में एक मिनट सुनाऊंगा। तो मम्मा शरीर छोड़ी है, हिस्ट्री हॉल में रखा हुआ है, सारे बच्चे योग कर रहे हैं, बाबा बैठे हैं सामने, बोले कि कोई एक ड्रॉप आंसू नहीं बहा सकता है, मम्मा से प्यार था तो आप शिव बाबा के पास जाओ, शिव बाबा को कहो बाबा मेरे मां को भेजो, दे दो, मां को नहीं ले जाओ। तो बच्चे बहुत प्यार से बाबा को रिक्वेस्ट करते थे, बाबा ने, बाबा तो जानन जानन हार थे, संदेशी को भेजा, देखो मम्मा क्या कर रही है। संदेशी गई, मम्मा लेटी हुई है वतन में, और उनके बालों में, देह सारे शरीर में एकदम सूक्ष्म सूक्ष्म तारे धागे बंधे हुए हैं और कोई खींच रहा है। संदेशी आकर के सुनाया कि बाबा मम्मा तो लेटी है और उनके बालों में, शरीर में, पांव में, सब जगह धागे बंधे हुए हैं, कोई खींच रहा है मम्मा को। तो बाबा ने कहा कि देखो बच्चे आप क्या, मम्मा के पास जा रहा है, लेकिन पावरफुल नहीं है कि खींचो सब मामा नीचे आ जाए। इतना बच्चों को योग कराया कि आंसू सूख गया, सब लगे हुए थे कि मामा आ जाएगी, तैयारी भी हो गया, नहीं बच्चे अपना योग तोड़ो नहीं, मम्मा चिता से भी उठ के आ सकती है, क्या नहीं हो सकता है। अर्थी से भी नीचे आ सकती है, मामा का अर्थी सजा गया, श्मशान में क्रिनेशन ग्राउंड में ले गया, ले जाया गया, लेकिन किसी बच्चे को ये वहां तक भी बाबा ने बांध कर रखा, नहीं बच्चे एकदम अनहोनी होगा, देखो तुम्हारी योग तपस्या काम करेगी और मम्मा चिता से उठ करके आ जाएगी, वहां तक इतना बाबा ने पावर भला। तो उसी तरह ये क्यों सुनाया, उसी तरह दादी ने किसी को हंसी नहीं बहाने दिया, इतनी दादी में पावर, नेक्स्ट टू ब्रह्मा इतनी पावर थी। उनको लौकिक माने लौकिक कहते हैं, छोटेपन मम्मा तो मम्मा थी, उनको मुन्नी मम्मा कहते थे, बड़ी मम्मा तो हमारी ओम राधे थी, इनको मुन्नी मम्मा कहते थे, छोटी मम्मा है, इतने पालना। तो ये कारोबार किया और सचमुच क्या बताऊं, दादी इतनी पालना देती थी, दादी के दिनों में हफ्ते में दो बार पिकनिक हम लोग जाते थे, अलग अलग स्थान पर ले जाती थी, सबको बहलाना, सबको ये करना दादी का काम था, लेकिन लॉ एंड लॉ का और बैलेंस रखती थी। एक बार की बात है, पीस पार्क में दादी पिकनिक के लिए ले गई, पूनम का रात था तो वहां गरबा वगैरह कराया, खीर ले गई थी, खीर खिलाया, तो 9 बज गया तो सब लोग आना शुरू कर दिए, तो कुछ भाई बल्लभ भाई थे, राजू भाई और हम 4-5 भाई थे, तो सबने कहा कि दादी पूनम की रात है तो हम अखंड भट्टी करेंगे पीस पार्क में। दादी ने कहा कि बल करो, मैं गया कि दादी मैं भी ये भाइयों के साथ मैं भट्टी करूंगा, तो दादी बोलती है कि तुमको पता है तुम डॉक्टर है, रात को कोई बीमार होगा तो दादी आएगी तुमको यहां बुलाने के लिए, तुम मेरे गाड़ी में बैठो चलो। मतलब ये दादी का नहीं था कि दादी ला एंड लॉ का बैलेंस रखती थी, भाई ये भाई लोग कह दिए तो इनको छुट्टी दे दिया तो हमारे को भी छुट्टी मिल जाए, नहीं तुम्हारी ड्यूटी है वहां ड्यूटी है, अपनी ड्यूटी करो, कहने का भाव ये था। एक दिन लौकिक घर गए थे, एक दिन लेट आए मेडिटेशन हॉल में मीटिंग चल रहा था, तो 10:30 बजे हम नाश्ता मीटिंग में देते हैं ना, तो हम नाश्ता दादी के सामने लेकर के गए ट्रे में प्लेट नाश्ता का, तो दादी मेरे को देख करके मुस्कुराया और कहती है कि मेहमान बनकर आए हो। एक दिन लेट था, वो दिन आज दिन कभी भी जो डेट दे के जाएंगे उस डेट पर आएंगे, मतलब कि इतना, मतलब कहने का भाव दादी का प्यार बहुत था। दादी यज्ञ के लिए, एक बार की बात है, हमारा एक भाई पंडित था, वो रात को पहरा देता था, तो पहरा देने वालों को दादी मरगोल में, 2 मरगोल है तो ऊपर रखती थी कि दिन को बेचारे सोएंगे, नीचे रहेंगे तो आना जाना लोगों के रूम में होगा तो उनका नींद खराब होगा, तो मरगोल में पहरा देने वाले रहते थे। 2 दिन दादी ने उसको देखा नहीं पंडित को, तो दादी बोलती है कि बनारसी पंडित 2 दिन से दिखाई नहीं दे रहा है, जरा देखो रूम में क्या करता है, बीमार तो नहीं है। तो मैं गया तो वो उसको 104 डिग्री टेम्परेचर, अकेले रूम में कोई पानी देने वाला नहीं, तड़फ रहा था। मैं देखा, थर्मामीटर बीपी इंस्ट्रूमेंट लेके गया तो देखा, फिर यूडिकोलन और आइस वाटर दवाई वर दे करके नॉर्मल करके फिर आया तो दादी को बोला कि दादी उसको 104 डिग्री टेम्परेचर, जैसे माँ होती है बच्चा कहीं अगर तकलीफ में है तो माँ को फट से पता पड़ जाता है, तो दादी को फट से पता हो जाता था कौन बीमार है क्या है। इतनी पालना दादी करती थी, तो एक एक का ध्यान रखती थी। मान लीजिए मुरली सुना रही है, कोई ध्यान गया, कोई भाई नहीं दिखाई दे रहा है, तो किसी को भेजेगी उठ करके जाओ देखो कौन कौन रूम में सोया है, कौन क्या कर रहा है। आज तो कोई पूछने वाला नहीं है, मुरली सुनो न सुनो क्या करो कोई नहीं। दादी इतना ध्यान देती थी। एक बार की बात है कि दादी हमको बोलती थी कि दादी बहुत बिजी रहती थी तो उनको टाइम नहीं होता था, तो दादी बोली कि मैं नाश्ता करने जाती हूं ना तो तुम नाश्ते पर आ जाओ और कौन बीमार है किसको क्या तकलीफ है मेरे को सुनाओ। सबका ध्यान रखती थी। पेशेंट के लिए दादी का बड़ा ये था, करुणा था, तो रोज हम आकर के सुनाते थे। एक दिन मुन्नी बहन चिढ़ गई कि तुम रोज खाने नाश्ते पर आकर के पेशेंट की बात बीमारी की बात सुनाता है, कल से नहीं आना। तो दो दिन हम नहीं गए, भाई मुन्नी बहन बोल रही तो मैं उनकी बात तो काटूंगा नहीं। दो दिन नहीं गए तो बुलवाइए, भाई तुम दो दिन से आया नहीं। मुन्नी बहन वहां खड़ी थी, मैं कैसे कहूं कि मुन्नी बहन ने मना किया। तो मैं चुप हो गया, तो दादी समझ गई कि मुन्नी ने मना किया होगा। तो तब तक मुन्नी बहन ने कह दिया कि दादी मैंने मना किया कि रोज रोज नाश्ते पर क्या बीमारी की बातें सुनाता है, आप नाश्ता कर लो तो इसको बुला करके आप बीमारी की बात सुनो। तो दादी ने कहा मुन्नी ये जब तक ना हमारे बच्चों का हमारे भाई बहनों का समाचार नहीं देगा तब तक हम नाश्ता नहीं करेंगे कल से। इतना बोल्ड डिसीजन दादी मुन्नी ने कहा कि अच्छा दादी जो पहले आप सुन लो नाश्ता जरूर करो। दादी इतना दादी का प्यार था भाई बहनों से, इतना ये था, एक एक का ध्यान रखती थी। तो इस तरह से दादी का मैं समर्पित हुआ तो संदेशी दादी मुजफ्फरपुर से संदेशी दादी मेरे को लाई और कहा कि दादी बालक को लाए हैं, आपको जब तक सेवा है तब तक आप इसको रखिए, नहीं सेवा हो तो मुजफ्फरपुर भेज दीजिए मेरे पास। वो दिन आज दिन सेवा पूरा नहीं हुआ, मैं मुजफ्फरपुर गया नहीं। तो मतलब कि मैं क्या सुनाऊं दादी की, इतना दादी ध्यान रखती थी। हॉस्पिटल बना तो कोई बीमार होता था तो दादी मेरे को कान में बोलती थी कि हम पांडव भवन चले जाएंगे तो मुन्नी बाहर नहीं निकलने देगी, जब मुरली सुना करके मैं गाड़ी में बैठती तो तुम पीछे बैठ जाना और सीधा आज हॉस्पिटल चलेंगे, सब पेशेंट से मिल के आएंगे। मुन्नी इधर ढूंढ रही है दादी गई कहाँ, दादी गई कहाँ। मैं आता था तो मेरे को डांट मिलती थी, तुमने बताया नहीं दादी को लेके चला गया। दीदी मैं तो खुद ही मैं जा रहा था रूम पर पांडव भवन तो दादी बैठा दिया कि इधर बैठो और चलो, तो मैं कैसे, और उन दिनों में मोबाइल था नहीं कि मैं फोन करूं। तो मतलब दादी इतना प्यार बच्चों से, पेशेंट से, पेशेंट को पास जाएगी। एक बार की बात है, यहाँ के सन्यासी लोग बहुत एंटी थे बाबा के बारे में, मामा के बारे में, यज्ञ के बारे में बहुत उल्टा सुल्टा बात करते थे। तो हम एक दिन सन्यासी के पास से होके आ रहा था तो दादी भोजन करके आगे जा रही थी, 10 कदम पैदल करने के लिए मैं आ गया। तो दादी पूछते कहाँ से आ रहा है, हम जो फलाना सन्यासी बुलाया था तो गए थे, क्या लेके गया। हम बोला कुछ नहीं ले गया। तो दादी ने बोला आज के बाद कोई भी सन्यासी के पास जाओ तो टोली ले जाओ, कुछ फल ले जाओ, कुछ टोली में नहीं मिलता है, फल नहीं मिलता है तो बगीचे से एक फूल तोड़ करके ले जाओ, खाली हाथ नहीं जाना है। वो दिन और आज दिन कहां भी जाते मैं खाली हाथ नहीं जाता, सेंटर पे भी जाऊंगा तभी भी टोली लेके जाऊंगा, कुछ लेके जाऊंगा, दादी इतना। तो दादी ने सन्यासियों का भी दिल जीता। दादी ने कहा कि अच्छा सन्यासी सब आएंगे, हम बोले हाँ दादी। तो दीदी दादी डेट फिक्स किया जे, जे, अपना रक्षाबंधन का दिन मेडिटेशन हॉल में दादी ये लगा दिया, दरी बिछवा दिया और बहुत अच्छा ब्रह्मा भोजन। इन्हीं दिनों बरसात का दिन था, एक टंकी गर्म पानी का, एक टंकी ठंडा पानी का, उनका हाथ धोने का तौलिया, ये वो बहुत अच्छा भोजन करा दिया। दादी को हमने बताया था कि दादी सन्यासियों को कितना भी सौगात दे दीजिए, कुछ भी दे दीजिए, लेकिन उनको दांत घिसाई चाहिए। बोले कि दांत घिसाई क्या होता है? तो पैसा चाहिए, बिना पैसा का वो अशुभ मानते हैं। तो दादी बोली कि मैं यज्ञ से तो नहीं दूंगी। तो हमारा एक गोवर्धन भाई था सेठ बुरानपुर का, उसके केले का बहुत बड़ा बिजनेस था। तो वो आया था तो उसको बुलाया, दादी ने कहा तो बोला कि दादी तो बहुत अच्छी बात है, हमारा कुछ सफल हो जाएगा। तो दादी को अपने पास बैठा दिया, दादी गिफ्ट देती थी, दीदी टोली देती थी और वो पैसा देता था। सन्यासी इतना खुश होकर के गए, इतना खुश होकर के गए कि गौमुख, आप लोगों ने नाम सुना होगा, कई लोग गए भी होंगे, यहाँ माउंट में गौमुख है, 180 एकड़ जमीन है। दूसरे दिन वो सन्यासी आकर के मेरे को बुलाया, हम चार पांच भाई गए और हमारे नाम पर विल कर दिया कि 180 एकड़ जमीन यज्ञ के नाम पर विल कर दिया। विल का कागज ले आए, दादी को दिया, दादी तो बड़ी नाराज हुई, भाई ये सन्यासियों का धन हमको लेना है क्या? क्यों तुमने लिया, क्यों नहीं दादी से पूछा? हमने तो सोचा कि 180 एकड़ जमीन मिल रहा है, पूछना क्या है, मिला दादी को दो। छोटा सा पांडव भवन में बैठे थे, ज्ञान सरोवर नहीं था, कुछ नहीं था, तो हम तो खुशी में थे। तो बोले कि नहीं अभी कभी लौटाओ। और इतने में बाजार, छोटा सा जगह है, बाजार में हो गया कि ब्रह्मा कुमारियों ने सन्यासी का धन हड़प लिया, एंटी ये हो गया। हम जाके लौटाए तो थोड़े देर में पता लगा कि अरे दादी का इतना त्याग है कि 180 एकड़ जमीन लौटा दिया। बोला कि नहीं, हम सन्यासियों का धन मुझे नहीं चाहिए, ये भी समाचार चला गया। मैंने दादी जरा भी उनमें लोभ लालच कोई ये नहीं था, हम क्यों सुना रहे हैं? इतना दादी कुछ नहीं था, तो उन्होंने लौटा दिया। वो सन्यासी रोने लगा, हम बोला कि दादी को फोन करो। दादी को फोन किया, दादी फोन उठाई, बोला कि महाराज ये बच्चे आपकी सेवा में रहेंगे, जब आपको 12 बजे रात को जरूरत पड़े तो आप फोन करिए, इनको भेज दूंगी, लेकिन आपका धन नहीं लूंगी, क्योंकि हमारा नियम नहीं है, सन्यासी का धन आश्रम में हम नहीं रख सकते हैं। सोचो आज 180 एकड़ जमीन होता तो पूरा आबू हमारा होता, ज्ञान सरोवर बनाने की जरूरत नहीं होती, इकट्ठे हम सब होते, उधर शांति बन जाने की जरूरत ही नहीं पड़ती, लेकिन दादी ने रखा नहीं, इतना दादी ये थी। तो मैं घड़ी भी देख रहा हूं कि हमको पूरा टाइम पर पूरा करेंगे, और क्या सुनाऊं और क्या ना सुनाऊं वो भी मैं देख रहा हूं। तो दादी ने लौटा दिया और लिया नहीं, और उसकी सेवा के लिए जब भी फोन करता था, बीमार होता था, उसको हॉस्पिटल लाते थे, सब कुछ करते थे, मतलब। और तब से सन्यासियों का आना जाना, दादी के लिए बहुत प्यार, हर त्योहार पर आना जाना शुरू हो गया, जो कभी आते नहीं थे, कभी कुछ करते नहीं थे, दादी के इतनी बड़ी दिल थी। अब थोड़ा ज्ञान सरोवर के बारे में हम सुनाना चाहूंगा। तो रात को बाबा आए थे, मुरली चलाया, पार्टियों से मिले, कहां, ओम शांति भवन में, और बाबा विदाई ले रहे थे, तो दादी सामने थी, तो हम लोग तो छोटा परिवार था, तो हम लोग भी साथ में बैठते थे। तो बाबा ने कहा कि बच्चे इतना परिवार बढ़ रहा है, इतने भाई बहने आ रहे हैं, आपको संकल्प नहीं चलता है कि कुछ मधुबन को बढ़ाया जाए? तो दादी ने बहुत प्यार से कहा, बाबा यहाँ मकान बनाना बंद है, सरकार बनाने नहीं देती है, जमीन मिलता नहीं है, मकान कोई बेचता नहीं है, मकान मिलता नहीं है, हम क्या करें? बाबा ने कहा कि सब कुछ मिलेगा, वरदान दे करके बाबा चला गया। मैंने बाबा को तो जाना ही था, बाबा विदाई लिए। दूसरे दिन 10 बजे, ये दूरिया गांव है, तो साल गांव है, साल गांव से दूध लोग देने 51 से आते थे और अभी भी देते हैं। तो वो दूध वाले आए तो कहे कि भाई हमको दादी से मिलना है। अरे भाई क्या काम है, तुम बताओ, मैं काम कर देता हूँ, तुमको पैसा चाहिए दे देता हूँ, दादी से दिला देता हूँ। नहीं, हम दादी से आज मुझे मिलना है। अच्छा भाई, जिद पकड़ लिए। तो दादी को सुनाया कि दादी वो दूध वाले आज आपसे मिलना चाहते हैं। कहते हैं, नहीं दादी के मिले बिना हम जाएंगे नहीं। दादी बोली कि बुलाओ, अच्छी बात है, मिलना चाहते हैं, बेचारे इतने यज्ञ की सेवा करते हैं, दादी मिलेगी। तो ले आए, दादी को कहा कि दादी बच्चों की शादी करनी है, मुझे थोड़ी जमीन है, बेचना चाहते हैं, आप ले, आपको पहले आए हैं हम आपके पास, आप लेंगे तो आपको देंगे, नहीं तो जाके बाजार में होटल वालों को देंगे, क्योंकि मुझे पैसा चाहिए। दादी ने कहा कि नहीं, आप इतना भावना से आप आए हैं तो हम लेंगे। और दूध वालों के साथ हम 4-5 भाइयों को भेज दिया। हम लोग आए तो ये जो आप देख रहे हैं वो ज्ञान सरोवर नहीं था, कटीली झाड़ियां थी, खंडहर था, टूटे फूटे थे, कोई पेड़ छोटे थे तो उसके पत्तियां काट करके, टहनियां काट करके ये जानवर को खिला दिए थे, कटीली झाड़ियां चारों तरफ। हम लोग आकर के देखे तो अच्छा नहीं लगा, वाइब्रेशन भी अच्छा नहीं लगा। तो जाकर के दादी को सुना है कि दादी लैंड तो अच्छा है लेकिन कहीं समतल जमीन नहीं है जी, कहां मकान बनाएंगे, कहां कुछ करेंगे। तो दादी ने कहा कि हम देख सकते हैं। हम कहे दादी आप कहां कैसे जाएंगे, हम लोग तो बड़ा मुश्किल से गए। तो दादी बोलते तुम लोग जा सकते हो, दादी को क्या समझा है, दादी नहीं जा सकती है, शाम को दादी तैयार होके आएगी, चलेंगे हम लोग। दादी आई और कोने पर खड़े होकर के 15 मिनट दृष्टि दिया लैंड को, खड़े खड़े, क्योंकि कोई बैठने की जगह नहीं थी। फिर दादी बोलते कि नहीं ले लो जमीन, ले लो। दूध वालों को मैसेज दिया भाई, दूसरे दिन दूध वाले रजिस्ट्री करा दिया, लैंड मिल गया। अब इतना बड़ा लैंड, एग्रीकल्चर लैंड है, अब इसको कैसे कन्वर्ट किया जाए, एग्रीकल्चर लैंड में हम मकान नहीं बना सकते हैं। तो उन दिनों में भैरव सिंह शेखावत थे चीफ मिनिस्टर, उनका वो उनका राज्य, उनका ये हुआ, शासन खत्म हुआ कुछ कारण से, गवर्नर का रूल आ गया। तो वो नहीं, उनको कुछ जमीन था जो एग्रीकल्चर से नॉन एग्रीकल्चर में कन्वर्ट करना था, तो उन्होंने पेपर में निकाला कि 8 दिन के लिए राजस्थान सरकार नियम बना रही है कि जिसको भी एग्रीकल्चर से नॉन एग्रीकल्चर में लैंड कन्वर्ट करना है तो करा सकता है। करना था तो उनको अपना, लेकिन अपना करेंगे तो लोग पब्लिक ही करेगा। तो हम लोगों को ये हो गया, फटाफट एप्लीकेशन दिया, एग्रीकल्चर से नॉन एग्रीकल्चर में हो गया। अब इसका नक्शा बन गया, अभी म्यूनिसपालिटी पास नहीं करे, राजस्थान सरकार सेक्रेटरी पास नहीं करे। तो चन्ना रेड्डी आए थे, उन दिनों में राजस्थान के गवर्नर थे, राजभवन सामने, पांडव भवन के सामने पीछे है। तो चन्ना रेड्डी, बच्चों का प्रोग्राम था, तो चन्ना रेड्डी गवर्नर थे। तो दादी ने कहा कि बच्चे 3000 आए हैं तो गवर्नर यही हैं, गर्मी में आए हैं तो उनको बुलाओ, बच्चों का बाल शिविर का उद्घाटन करें। उनके पास हम लोग गए, उन्होंने, वो तो फ्री थे तो उन्होंने स्वीकार कर लिया कि दादी बुला रही हैं, बच्चों का प्रोग्राम है, हम जरूर आएंगे। वो शाम को आ गए, बच्चे ऐसे ही बैठे हैं पूरा हॉल में, कोई हिल नहीं रहा है बच्चा। तो गवर्नर को आश्चर्य हुआ कि बच्चे तो चंचल होते हैं, कुछ भी करूं तो अपना उदम मचाते हैं, ये तो बच्चे हील नहीं रहे हैं। क्या बात है? तो दादी, गवर्नर यहां बैठा है, दादी जी यहां बैठी हैं। तो गवर्नर पूछता है, दादी जी ये बच्चों को क्या आपने सिखाया कि हिल नहीं रहे हैं? तो ये बच्चे सुबह उठ करके मेडिटेशन करते हैं। वो चौंक गया, मेडिटेशन क्या होता है? तो दादी ने गवर्नर को कान में बोला कि मैं आत्मा हूं, परमात्मा शिव बाबा है, उनको याद करना यही मेडिटेशन है। तो बोला कि हमको भी सिखाओ, हम कल से रोज आएंगे। तो दादी बोली कि नहीं नहीं, रोज आएंगे तो आबू वाले कहेंगे कि ब्रह्मा कुमारी में क्या हो गया, रोज गवर्नर इंक्वायरी करने जा रहा है। हम आपके पास दो बहनों को भेजेंगे और राजभवन में कोर्स करा के आएंगे। बोला कि ठीक है चलो। हमारी शीलू बहन, उषा बहन, दोनों को भेजा, बहने कोर्स करा कर आई। 7 दिन के बाद गवर्नर आ गया, कोर्स पूरा हुआ। दादी हमारे राजभवन में बाबा का कमरा मैं बनाता हूँ, आप उद्घाटन करो। चलो भाई, उद्घाटन राजभवन में मेडिटेशन रूम का उद्घाटन, क्योंकि चन्ना रेड्डी किसी से डरता नहीं, तो पावरफुल गवर्नर। तो फिर जब जाने लगा तो फिर आया, दादी मुझे कुछ काम दो, हम भी यज्ञ सेवा करें, भाग्य बनाए। तो दादी ने कहा कि यज्ञ आपका है, जो चाहिए वो करिए। बोला कैसे नहीं, कुछ काम हमको दीजिए, ये काम गवर्नर को करना है। तो दादी हंसते हंसते बोली कि एक जमीन है, नक्शा बन गया है, एग्रीकल्चर से नॉन एग्रीकल्चर में भी ट्रांसफर हो गया है, लेकिन नक्शा कोई पास नहीं कर रहा जो हम काम शुरू करें। बोला कि ये काम मेरा है, मेरे को दे दो। नक्शा लेके चला गया। गवर्नर गया, दूसरे दिन भैरव सिंह शेखावत का डिसमिस हो गया, उनका राज खत्म हो गया, गवर्नर रूल लागू हो गया। 4 दिन के बाद गवर्नर ने सारे सेक्रेटरी को बुलाया और गवर्नर हाउस में मीटिंग किया और ये नक्शा रख दिया। बोला कि सर ये तो ब्रह्मा कुमारी ले आए थे, हमने रिजेक्ट किया, इतना बड़ा प्रोग्राम, इतना बड़ा प्लानिंग हम पास ही नहीं कर सकते हैं। गवर्नर ने बोला कि ऐसा नहीं बोलो, कुछ भी हो, कोई भी नियम बनानी है बनाओ, मैं साइन करता हूं, लेकिन ये नक्शा पास करना है। अभी गवर्नर बोल रहा है तो सेक्रेटरी को साइन करना पड़ेगा, साइन सबने कर दिया। गवर्नर ने फोन किया, हम लोग जाकर के नक्शा लेके आए। अब उसको बनाने के फाउंडेशन स्टोन गवर्नर को बुलाया। गवर्नर आकर के देखा कि तो उबड़ खाबड़ जमीन है, कंटीली जमीन है, कैसे दादी बनाएगी, इनको क्या लगा हुआ है। चलो बोला नहीं, उद्घाटन फाउंडेशन स्टोन डाल के जयपुर चला गया। 1 साल के बाद वो गवर्नर को फिर बुला करके बोलती कि उद्घाटन करो। गवर्नर हैरान हो गया कि ये तो कटीली झाड़ियां थी, कोई ये नहीं था, और ये भी गवर्नमेंट ने रूल बना दिया कि कहीं पत्थर तोड़ना नहीं है, कहीं तोड़ा भी नहीं है, और इतना बड़ा भवन बना दिया। तो दादी से पूछता है, दादी ये कैसे बनाया? तो दादी ने कहा कि हमारे 1000 इंजीनियर थे, मजदूर तो छोड़ दीजिए, वो रात दिन खड़े होकर के काम कराते थे, अपना अपना ड्यूटी से छुट्टी लेके, कोई 1 महीना, कोई 15 दिन, कोई 2 महीना के छुट्टी लेकर के काम किया है, और 1 साल में ये बन गया है। हैरान हुआ कि ये परमात्मा का ही काम है। तो दादी को इतना उमंग था, जो काम नहीं होने वाला है वो भी करा देती थी, कितना युक्ति से कराती थी। बोलती है मुरली चलाते चलाते, आज बाबा मेरे को सोने नहीं दिया, कहता है बेटी ये काम करो। अब बाबा कहा है, दादी नहीं बोल रही है, बाबा कहा है तो आप लोगों का क्या विचार है? अरे बाबा कहा है, दादी बोल रही है, तो अब हम लोग अपना विचार देंगे क्या? जो बाबा कहा है, जो दादी कर रही वही होना है। इस तरह से कभी ये नहीं कहा कि मैं कह रही हूं, ये मेरा विचार है, नहीं, न मीटिंग में न कहां भी, मैं कह रही हूं, नहीं, बाबा दादी कह रही है। मैं पन तो उनके डिक्शनरी में नहीं था, दादी कह रही है, दादी का ये विचार है। मेरा विचार भी कह सकते हैं ना, ये मेरा विचार है, नहीं, दादी का विचार है। मुरली से उनका इतना प्यार था, उनको बैकेक होता था, बैकेक होता था तो हील नहीं सकती थी। 2 दिन 3 दिन मुरली उनको मुन्नी बहन सुनाने नहीं देती थी। उनको जब तकलीफ होता था, शुरू होती थी, तो मेरे को बुलाती थी, देख मेरे को तकलीफ हो रही है, मेरे को दवाई दो, मुन्नी को सुनाना नहीं, नहीं तो वो मुरली सुनाने जाने देगी। मुरली से उनका उतना प्यार था, तो दादी को दवाई दे करके आते थे, पुड़िया देखती, दादी ये क्या पुड़िया खाती, आते नहीं थोड़ा गला खराब हो रहा है ना तो इसलिए खा लिया, कुछ है नहीं मेरे को, और पट्टा बांध करके अपने हाथ से, और वो जाती थी मुरली सुनाने। मुरली उनका जान था, अंत तक, दिन में 5 बार बाबा व्यक्त हुए तब से 5 बार, और ऐसे मुरली सुनाती थी, लोगों को नचा देती थी, इतनी अच्छी मुरली। हालांकि हर दादियां अच्छी सुनाई, जान के दादी सब दादियां, लेकिन दादी जैसा मुरली कोई नहीं सुनाया, बाबा ने वरदान दे दिया, और व्यक्त हुए तो वरदान दे करके गए, दादी जैसा मुरली कोई नहीं आज तक सुनाया, तो इतना दादी में ये थी। और दादी अंत तक, रात को 12 बजे आ रही है सेवा से, और सुबह 3:30 बजे हिस्ट्री हॉल में आकर के योग करा रही है। इतना योग से उनका प्यार था, यज्ञ से उनका इतना प्यार था। अपने रूम से जाती थी, हम लोग पहरे पर बैठते थे बाहर, वहां लाइट जल रही है तो वो बोलेगी नहीं, तुम पहरे पर बैठा है लाइट क्यों नहीं बुझाता है, नहीं, लाइट ऑफ करके जाती थी मुरली सुनाने के लिए, बोलती नहीं थी। इतना दादी का यज्ञ, उनके रोम रोम में यज्ञ बसा था, उनके रोम रोम में यज्ञ बसा था, तो इतना दादी को यज्ञ से प्यार था। मैं क्या बताऊं, समय भाग रहा है, 4 मिनट में मैं और एक बात सुनाना चाहूंगा। दादी कहां भी पब्लिक में, डॉक्टर में के प्रोग्राम में, उद्घाटन में आती थी, पब्लिक प्रोग्राम में जाती थी, तो इतना अच्छा भाषण करती थी, इतना अच्छा स्पीच करती थी कि सबके दिल जीत लेती थी, और बोलती थी कि आप लोग जो खाते पीते हो, रॉयल भाषा यूज करती थी, ये नहीं कहती थी तुम शराब पीते हो या नॉन वेज खाते हो वो छोड़ो, नहीं, ये आप लोग जो खाते पीते हो ना, दादी को अच्छा नहीं लगता है, तो क्या आप हाथ उठाएंगे कि आज के बाद हम वो जो खाते पीते रहे, तो सब लोग मुस्कुराने लगते थे, VIP लोग होते थे, दादी क्या कहना चाहती है, तो सब लोग हाथ उठाते हैं, जी दादी आज के बाद से हम कुछ पिएंगे नहीं, कुछ ऐसे वैसे खाएंगे नहीं, इतना प्यार से दिल जीत लेती थी। और सभा में सब लोग, चाहे डॉक्टर की सभा है, चाहे जो भी वर्ग की सभा है, दादी हर वर्ग में जाती थी, चाहे बाहर की सभा में, हमने कई बार देखा है, बाहर की अज्ञानियों की सभा है, सेंटर पर जाती है तो अज्ञानियों की सभा बहने इकट्ठा करती हैं, तो उन लोगों से भी प्लेज, अभी तो उसका शब्द हम प्लेज के रूप में देते हैं, उन लोगों से भी हाथ उठवाती थी, दादी को अच्छा नहीं लगता, इतना अच्छा सभा, आप देवता बनने वाले, बाबा देवता बनाने आया है, और आप लोग क्या खाते पीते हो, दादी बोलेगी नहीं, तो दादी हाथ उठवाती थी। तो अब दादी का पुण्य तिथि आ रहा है, 18वां पुण्य तिथि है, 18 साल हो गया दादी को व्यक्त हुए, इस पुण्य तिथि पर हमारी टीचर बने बैठी है सामने, आप लोग भी बैठे हैं, ध्यान दीजिए, इस बार हमने संकल्प रखा है कि 10 करोड़ लोगों से हमको प्लेज लेना है, नशा मुक्ति का हमारा प्रोजेक्ट चल रहा है, दुनिया में बहुत सारी एनजीओ काम कर रही है, नशा छुड़ा रही है, लेकिन उनके कहने से लोग नशा छोड़ते हैं, 2 महीना 4 महीना 6 महीना 5 साल छोड़ते हैं, 5 साल के बाद फिर से पीना शुरू कर देते हैं। ब्रह्मा कुमारी में एक बार हमारी ये बहने कोर्स कराती है, ज्ञान सुनाती है, एक बार व्यक्ति छोड़ दिया और बाबा के मुरली सुनना शुरू कर दिया, योग लगाना शुरू कर दिया, 25 साल हो गया, 30 साल हो गया, 40 साल हो गया, वो दोबारा टच नहीं किया है, है ना, अपने सेंटर पर जो अज्ञान काल में लोगों ने व्यसन लिया और व्यसन छोड़ दिया, आज उनको ज्ञान में चलते 40 साल हो गया, टच नहीं किया। जब ये सरकार को बताते हैं, भारत सरकार को जब बताया, क्योंकि भारत सरकार के साथ MOU हुआ है, 4 मार्च 2023 शास्त्री भवन में इनका ऑफिस है, वहां उन्होंने उनके मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार कैबिनेट मंत्री, आज भी वो कैबिनेट मंत्री सोशल जस्टिस वेलफेयर डिपार्टमेंट के हैं, स्टेट मिनिस्टर रामदास अठावले, उनके चीफ सेक्रेटरी डायरेक्टर सारे लोग बैठे हैं वहां, साइन हो रहा है, आशा दीदी साइन कर रही हैं। और उन्होंने बोला कि 3-3 मास का रिपोर्ट दीजिए, कितने लोगों को अपने व्यसन छुड़वाया और कितने लोगों को ज्ञान व्यसन के बारे में जानकारी दिया। हम रिपोर्ट दिए तो हैरान हो गए कि पूरे भारत में अपने भारत का रिपोर्ट आप ला कर दे रहे हैं। हमने कहा कि सर 140 कंट्री में ब्रह्मा कुमारी का आश्रम है, 140 कंट्री में हम आवाज लगाते हैं तो 140 कंट्री में सुनाई देता है, तो समझे कि ऐसे ही बातें करते हैं ये। तो उन्होंने कहा कि रोज रोज के रिपोर्ट भेजिए, रोज रोज के रिपोर्ट हमारी जा रही है, इंस्टाग्राम फेसबुक मीडिया में रोज के रोज रिपोर्ट जा रही है। सरकार इतनी खुश कि बनारस में युवाओं को कैसे बचाया जाए, चिंतन शिविर रखा था, पूरे भारत से 123 संस्थाएं आई थी, 123 संस्थाएं आई थी, उसमें पहला नंबर ब्रह्मा कुमारी को उन्होंने लिखा था कि इन्होंने काम किया। मैंने इस तरह से ये सेवा चल रही है। तो कहने का भाव है कि दादी जी के पुण्य तिथि पर हम 9 तारीख को राखी बांधने के लिए हम सब जाते हैं, राखी बांधना है, बांधते ही हर साल। इस बार हम आप बहनों से रिक्वेस्ट करेंगे कि राखी बांधने स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी में भी जाइए, हेडमास्टर को राखी बांधिए, मास्टर को राखी बांधिए, प्रिंसिपल को राखी बांधिए और उनको कहिए कि दादी जी का पुण्य तिथि आ रहा है 25 अगस्त, हम 22, 23, 24 अगस्त को आएंगे और हर स्कूल में, हाई स्कूल में प्रेयर होता है, प्रार्थना सभा होती है, तो उस प्रेयर में उनको कहिए कि प्रेयर में हमको 1 मिनट दीजिए, हम आपका बच्चों का बहुत टाइम नहीं लेंगे, और उस प्रेयर के बाद हम बच्चों से हाथ उठवाएंगे कि आज दादी जी की सच्ची श्रद्धांजलि है कि हम भारत को नशा मुक्त बनाएंगे रॉयल्टी से। अब एक स्कूल में 5,000-10,000 होते बच्चे पढ़ते हैं, एक साथ 5,000 बच्चों से आप प्लेज लिया, क्या 10 करोड़ कोई बड़ी बात है? कोई बड़ी बात नहीं है। तो दादी जी की अंतिम इच्छा हम इस बार श्रद्धांजलि 10 करोड़ लोगों से प्लेज ये करेंगे, 5 करोड़ लोगों तक हम पहुंच चुके हैं, सरकार हमारे साथ है। अब सरकार बोलती है, लोग पूछते हैं कि आपने कितने लोगों को छुड़ाया है, तो हम कहते हैं लाखों लोगों को छुड़ाया है, लेकिन मेरे पास डॉक्यूमेंट्स 2 लोगों का भी नहीं है। तो हमने क्या सोचा कि नहीं, जो छोड़े हैं 2 साल से ऊपर उनका हम सम्मान करेंगे, आप लोग कलकत्ता से आए हैं तो आपके सेंटर पर, आपके जितने भी ब्रांचेज सेंटर हैं, सभी सेंटरों पर जो जो भाई बहने व्यसन लेते थे और बाबा के बनने के बाद छोड़ दिए हैं, उनका फॉर्म आप रोजरी में भेजा है, अगर रोजरी नहीं आपने देखा तो यहां से आप फॉर्म ले जाइए एवर एलडी से और फॉर्म भरवाइए, हम आकर के उनका सम्मान करेंगे, उनको मेडल पहनाएंगे, उनको पट्टा पहनाएंगे, उनको सर्टिफिकेट देंगे, क्योंकि 30 साल तो हमारे पास, अब साइंटिस्ट हमारे पीछे लगे हैं कि ऐसी क्या बात है ब्रह्मा कुमारियों में कि एक बार छोड़ दिया तो जिंदगी भर वो नहीं ले रहे हैं, दुनिया छोड़वाती है वो 2-5 साल के बाद वो पीना शुरू करते हैं, ब्रह्मा कुमारी के मेडिटेशन में ऐसी क्या जादू है, क्या खासियत है, क्या ऐसी इंपॉर्टेंस है कि लोग जीवन बदल देते हैं और नशा नहीं कभी टच नहीं करते हैं। तो वो रिसर्च करेंगे ये पेपर पर, मैं आपको क्या बताऊं, हमारी ये बहनें, कोई डॉक्टर नहीं है, कोई नर्स नहीं है, कोई हॉस्पिटल में काम नहीं किया है, लेकिन इनकी त्याग तपस्या, इनकी प्यूरिटी, किसी को भी कोर्स कराती है वो बदल जाता है, वो व्यसन छोड़ देता है, छोड़ दूसरों के कहने से नहीं छोड़ता, इन बहनों के कहने से छोड़ देता है, वो राज्यों का अभ्यास करना शुरू करता है, मुरली सुनना शुरू कर देता है, उसको कभी तलब नहीं होती है, दुनिया में तलब होती है। और ब्रह्मा कुमारी में कभी किसी को ये नहीं होता है, विड्रॉल सिम्टम्स नहीं होता है। तो ये यूनिक चीज बाबा को प्रत्यक्ष करने के लिए हम लोग ये करेंगे, क्योंकि अभी अंतिम समय चल रहा है, खेल समाप्ति हो रही है, यज्ञ को आप देख रहे हैं, सेंटरों को देख रहे हैं, दुनिया को देख रहे हैं, कब तक? तो प्रत्यक्षता करनी है ना, तो लोगों को प्रत्यक्ष करना कि नहीं, ब्रह्मा कुमारी जो योग सिखाती है वही सबसे श्रेष्ठ योग है, जो एक बार छोड़ देता है दोबारा टच नहीं करता है। तो इसलिए हम चाहेंगे कि नहीं, बाबा इष्ट में आया, इष्ट से ये किया है, तो ये नशा मुक्ति का भी हम इष्ट में, आप बहनों से रिक्वेस्ट है, हर सेंटर में, चाहे वो एल्गिन रोड, चाहे वो बांगुड़ हो, चाहे जहां से भी हो, हम बेहद में रह करके सबसे भरवाएं और प्रेसिडेंट को बुलाएं, प्राइम मिनिस्टर को बुलाएं, दौड़े हुए आएगा कि इतने लोग बंगाल में मछली खाने वाले लोग, बिना मछली को तो जीते नहीं है, और उन लोगों को भी इन्होंने छुड़ाया है। इसमें कोई है क्या कि मछली खाते हो? कोई नहीं है, बंगाल का मुख्य भोजन वो है। और देखो हमारे बाबा के बच्चे, तो क्या जादू है, सरकार चाहती है, हमारे साइंटिस्ट चाहते हैं, तो ये करना है। दादी जी की सच्ची श्रद्धांजलि होगी। घड़ी तो भाग रही है, मैं यहीं विराम करूंगा, नहीं तो ये लोग कहेंगे कि भाई, तो किसी को कुछ पूछना है तो एक दो क्वेश्चन पूछ सकते हैं, नहीं तो यहाँ समाप्त करेंगे। सुनाने को तो बहुत है, लेकिन नहीं, समय की मर्यादा है।